नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। यूरो बैंक ने यूनान से भारत में सीमा पार धन भुगतान के लिए यूपीआई सेवा शुरू की है। ये पहल बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के रणनीतिक सहयोग का हिस्सा है। एक रिपोर्ट।
वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यूरो बैंक में सेवाओं का उद्घाटन भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के वैश्विक विस्तार में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। उन्होंने कहा कि यूनान में यूपीआई के शुरू होने से ग्राहक तुरंत सुरक्षित और निर्बाध रूप से धन हस्तांतरण कर सकते हैं। इससे लेन देन लागत पारंपरिक हस्तांतरण लागत के मुकाबले काफी कम हो गई है। श्री गोयल ने यूपीआई की बढ़ती वैश्विक स्वीकृति की सराहना की। उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस दृष्टिकोण में विश्वास को भी दर्शाता है जिसके तहत प्रौद्योगिकी आधारित समाधान विकसित किए जा रहे हैं। समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
दिल्ली सहित चार राज्यों में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ अगले महीने की 29 तारीख तक हर घर जाकर सभी मौजूदा मतदाताओं को पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्रों की दो प्रतियां वितरित करेंगे ताकि मतदाता सूची का सत्यापन और अद्यतन किया जा सके। संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। उन्होंने बताया कि मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। पश्चिम एशिया में तनाव कम करने के लिए चल रहे कूटनीतिक प्रयासों में बाधा आ रही है। दोहा में होने वाली अगले चरण की वार्ता को लेकर अमेरिका और ईरान से विरोधाभासी बयान आ रहे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दोहा में नई वार्ता आयोजित किए जाने के संकेत के बाद अमेरिका ईरान के संबंधों के भविष्य को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है। हालांकि ईरान ने इस दावे को दृढ़तापूर्वक अस्वीकार करते हुए कहा कि फिलहाल अमेरिका के साथ किसी भी प्रकार की बातचीत की योजना नहीं है। ईरान के अधिकारियों का कहना है कि अभी उनका ध्यान 14 सूत्री समझौता ज्ञापन को लागू करने पर है, जिसके बाद वे किसी व्यापक या अंतिम समझौते पर चर्चा करने पर विचार करेंगे। भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला को मानवीय सहायता प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने आपदा से प्रभावित लोगों के लिए चिकित्सा सहायता और आपातकालीन सहायता पर विशेष ध्यान देते हुए राहत कार्यों का विस्तार किया है। मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय बचाव और चिकित्सा दल वेनेजुएला के अधिकारियों के साथ मिलकर आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, खोज और बचाव अभियान भी चला रहे हैं और प्रभावित समुदायों को जीवन रक्षक मानवीय सहायता पहुंचा रहे हैं। मंत्रालय ने यह भी बताया कि भारतीय सेना का फील्ड अस्पताल चालू है और आपदा में घायल हुए लोगों को चिकित्सा देखभाल प्रदान कर रहा है। इससे पहले कल भारत ने वेनेजुएला में राहत और बचाव कार्यों को मजबूत करने के लिए भारतीय वायुसेना के 2 C-17 ग्लोबमास्टर विमान तैनात किए थे, जिनमें 41 सदस्यीय बचाव दल, 1 भारतीय सेना का फील्ड अस्पताल, 30 टन राहत सामग्री, 6 टन दवाएं और चिकित्सा उपकरण और 2 भीष्मक्यू पोर्टेबल अस्पताल थे। केंद्रीय सड़क और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज बताया कि सरकार ने देश भर में दुर्घटना संभावित ब्लैक स्पॉट और भूस्खलन संभावित सड़कों की पहचान की है और 50,000 करोड़ रुपए की लागत से सुधार कार्य शुरू किए हैं। नई दिल्ली में सड़क सुरक्षा पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री गडकरी ने कहा कि उचित साइनेज, लेन मार्किंग और अंडरपास सहित अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार सड़क इंजीनियरिंग सुनिश्चित करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। श्री गडकरी ने वाहन चालकों से यातायात नियमों का पालन करने, तेज गति से वाहन न चलाने, हेलमेट और सीट बेल्ट पहनने, लेन अनुशासन बनाए रखने और वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग न करने का आग्रह किया है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में बहुत तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। सिक्किम, असम, मेघालय, केरलम और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में भी आज इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।